बहुत ही अहम रुकू है, आयत नंबर 190 से लेके सूरत के आखिर तक। ये सूरत की आखिरी आयत, इनके बारे में ख़ास तौर पे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मिलता है। बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, इब्ने हब्बान हदीस की किताब है, अता बिन अबी रबाह ये वाक्य बयान करते हैं। कहते हैं कि मैं हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास गया, ये ताबई थे, और आप देखिए कि इल्म का शौक़ इनको हज़रत आयशा के पास ले गया। आज बहुत सारे लोग ये गिला करते हैं, औरतें क्यों पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, और औरतों से क्यों सुना जाए। तो बहरहाल एक ऐसा दौर था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ जो थी वो मर्दों के लिए भी इल्म का एक ज़रिया थी। कहते हैं कि मैंने जाके कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में से जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ आपने देखी हो वो बयान करें, ऐसे ही जैसे हम कभी कहते हैं ना कोई बात सुनाएं। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि आपकी क्या बात करूं, आपकी तो हर चीज़ ही अजीब थी। अजीब से मुराद उर्दू वाला अजीब नहीं, स्ट्रेंज का मानी नहीं, बल्कि खूबसूरत, उजुब से, और उजुब खूबसूरती और अपने अच्छेपन को कहते हैं। तो आपने कहा कि अल्लाह के नबी की तो हर शान ही बड़ी खूबसूरत थी। हाँ, एक वाक्या मैं तुमको सुनाती हूँ, और वो क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे पास तशरीफ़ लाए, यानी हज़रत आयशा की बारी थी, और लिहाफ़ में मेरे साथ दाखिल हुए। फिर कुछ देर के बाद फरमाया, अगर इजाज़त दो तो मैं अपने परवरदिगार की इबादत कर लूँ। यहाँ से हम अमल की एक बात ले सकते हैं कि एक मर्द अपनी बीवी के जज्बात का कितना ख्याल रखता है। एक तरफ तो यह है कि बीवी आधी रात तक शौहरों का इंतज़ार करती रहे और फिर आने के बाद भी उनका मूड देखें और गुस्सा खाएं, और दूसरी तरफ बीवी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं इबादत कर लूँ, क्योंकि रात का वक्त बीवी के लिए था। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी खूबसूरत बात की और जवाब बड़ा खूबसूरत दिया, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो आपका कुर्ब पसंद है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप इबादत करें। कैसा खूबसूरत मुस्लिम घराना है! आज कितने मर्द और कितनी औरतें अपने बीवी और अपने शोहर का ख्याल रखती हैं। बस दफ़ा तो हम सिर्फ बेगार काट रहे होते हैं, दूसरों की खिदमतें करते रहते हैं, और जिनके साथ असल में ताल्लुक़ होता है इंसान का, उसके साथ बात करने का मौका भी नहीं मिलता। बहरहाल कहने लगी कि मैं आपको आपकी खुशी के लिए इजाज़त देती हूँ। इसे एक अमल की बात भी निकली, और एक अच्छा घराना ऐसा होता है कि अगर आपका इबादत को दिल चाह रहा है तो एतमाद में लेते हुए पूछा जा सकता है। और ज़ाहिर है कि हज़रत आयशा भी जाग रही थी, अगर बीवी सो रही होती तो अब ये नहीं कि हर रात ही इस तरह हो और पहले अगले को जगाएं क्या मैं इबादत कर लूँ। तो ये अंडरस्टूड बात है कि जब एक बंदा जाग रहा है दूसरा भी, तो उस मौके पे अगर पूछ भी लिया जाए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। बल्कि यहाँ हमारे अमल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हदीस भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन जोड़ा वो है कि जब रात को शौहर उठे तो बीवी को उठाए इबादत के लिए, और बीवी उठे तो शौहर को उठाए, और जब वो ना उठे तो उन पे पानी के छींटे दें। अब आप ना दे लीजिएगा, जो पहले ही दुखी है, पता चले अगले दिन कोर्स ही गया, कौन रात को पानी के छींटे देगा जिनका दिन में अच्छा ताल्लुक है। तो ये ताल्लुक को चिड़ का ताल्लुक नहीं बनाना चाहिए। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी इस दवाजी ज़िंदगी को मुतमईन और मसरूर कर ले तो आप दीन के काम ज़्यादा खूबसूरत तरीके से करेंगे। तो कभी भी इन चीज़ों को अब चिढ़ बना के न रखें, बल्कि ये किसी का कमेंट पढ़ी दूँ, अभी आपने लिखा है किसी ने, कहती हैं कि दीन के कामों में बातें सुनने को मिलती हैं। इस बारे में मुझे आज ही एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं कुरान लेकर बैठ जाती हूँ, कभी वर्कबुक कभी रूट वर्ड्स। आज सुबह जब मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गई तो अभी 15 मिनट बाकी थे, मैं फ़ौरन अपना पारा लेकर बैठ गई। हस्बैंड हैरानगी से देखने लगे और बोले कि तुम हर मामले में इतनी ही सीरियस होती हो या सिर्फ इस मामले में सीरियस हो? जेलसी है ना कुरान से कि ये मुझे बैठ के देखती, कुरान क्यों देखने लग गई। मैंने कोई तुर्श जवाब देने की बजाय मजाक में कहा, मियाँ जी और मामलात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपके मामले में बहुत सीरियस हूँ। और मेरे इस जवाब ने उनको खुश कर दिया और मैं अपना काम करती रही। तो अब देखिए ये छोटी छोटी अटकेलियाँ होती हैं। अभी कुछ अर्सा पहले एक लेक्चर हमने मैनचेस्टर में किया था कि प्रॉफिट एट होम, और उससे पहले इसको और भी एंगल से हमने देखा हुआ है कि अल्लाह के नबी इतने लाइट माइंडेड थे अपने घर में। हमारे जहन में क्या आता है, दीनदार, तौबा तौबा, सांस उखड़ गया, इनके साथ रहना जिंदगी मोहाल, ये तो बस मुसल्ला टोपी जाए नमाज, इसी की बातें करेंगे। कभी आप अल्लाह के नबी और सहाबा की कुर्बत की जिंदगी देखें। बल्कि मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए बता सकती हूँ, मैं किसी के हालात नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा मारूफ जुमला है जी, अरबों के घरों में जाके देखो क्या कुछ होता है। बाहर तो ये बुरके पहन आती हैं, घर में कैसी हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं वो। एक मुसलमान मर्द की पूरी एंटरटेनमेंट घर में होती है। एक औरत सबसे अच्छे कपड़े और सबसे अपनी अच्छी आराइश घर में करती है। हमारा कल्चर बिगड़ गया कि घर में मासियां बने रहो और बाहर जाते हुए लिपस्टिक लगा के बैठ जाओ। तो बहरहाल, घरों के अंदर खैर लाए, आप अपने घर में अट्रैक्शन लाए, अपनी जात में कशिश लाए कि शौहर बीवी का ऐसा ताल्लुक है कि जिसमें अगर अल्लाह के बीच में इबादत भी करनी पड़ती है तो एक दूसरे को चीटे दो। कितना खूबसूरत वो घराना होगा। और आप देखिए कि अक्सर जब इंसान बुढ़ापे की तरफ मायल होता है तो एक से दूसरा, दूसरा उसको उठाता है, वो उसको उठाती है, तो ज्यादा अच्छा लगता है। और अल्लाह रहम करे अगर बुढ़ापे में भी एक दूसरे को फिल्म के लिए उठाए और टीवी पे मायल करे, तो फिर आप देख सकते हैं कि उनको अपनी उम्र के बढ़ने के साथ साथ इस चीज़ की वैल्यू का एहसास नहीं। बहरहाल, ये कहती हैं, अब मैंने देखा क्या कि अल्लाह के नबी उठे, फिर आपने अपनी नींद का खुमार दूर किया। या फिर देखिए, बिस्तर से उठना, खुमार दूर करना, क्या पता चला कि नबी भी नींद छोड़ते थे तो मुश्किल होती थी। आप देखिए, जब सुबह उठते हैं तो आंखें नहीं खुलती। हम सोचते हैं अल्लाह के नबी रोबोट थे, एकदम ना उनको नींद आती थी, झट से बिस्तर से उठ जाते थे और मैदान जंग में जाना होता था तो भागते थे। आप सीरत पढ़ के देखिए, आपको अल्लाह के नबी के इंसान होने में जो जज्बात का टच मिलेगा ना, वो बड़ा खूबसूरत है। कि उनको भी नींद आती थी, वो भी उठते थे। फिर कहती हैं कि आप अपनी जगह से उठे, अपनी आंखों को साफ किया, बिस्तर से उठे और उसके बाद फिर आपने वुजू किया और उसके बाद आप नमाज के लिए खड़े हुए। क़याम में आप इतना ज़ोर से रोए, यानी इल्हा के साथ रोए, आपके आंसू मुबारक जो थे वो सीने पे बहने लगे। फिर रुकू फरमाया, उसमें भी बहुत रोए, और सजदा किया, उसमें भी बहुत रोए, फिर सर उठाया और मुसलसल रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। खैर, ये सारा आपका था, किस वजह से हुआ, क्या हुआ? कहती, जब सुबह हुई और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की तला दी, तो हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप इस कदर क्यों रोते हैं? आखिर वजह क्या आपके इतने रोने की? आपके तो अल्लाह ने अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए हैं। तो उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, फला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बन जाऊँ, और क्या मैं शुक्रिया में गिरिया उजारी ना करूँ, क्योंकि आज की रात अल्लाह ने मेरे ऊपर वो आयात नाजिल की हैं कि जिस शख्स ने इनको पढ़ा और इन पे गौर व फिक्र नहीं किया, उसके लिए बहुत बड़ी तबाही है। और फिर आपने इन नफी खल की समावात से लेके आखिर तक पढ़ी। और रिवायात में ये मिलता है कि अल्लाह के नबी जब तहज्जुद के लिए उठते तो ये आयात पढ़ते थे बिस्तर पे बैठे ही, और आप वजू से पहले ही आयात पढ़ते थे। ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की उलमा के करीब कि बग़ैर वुजू के भी कुरान पाक पढ़ा जा सकता है। हाथ में कुरान नहीं होता था, बस उठते थे अपने बिस्तर पे बैठते और इसको पढ़ते। हज़रत इब्ने अब्बास से भी एक रिवायत मिलती है, इनकी खाला जो थी वो नबी की बीवी थी, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कहते कि एक रात मैं अपनी खाला के घर गया तो मैंने नबी का ये मामूल देखा कि वुजू से पहले ही ये आयतें पढ़ी आपने और उसके बाद फिर उठ के वुजू किया और फिर आप नमाज के लिए खड़े हुए। तो आइए हम भी देखें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो इन आयतों को पढ़े, पढ़ना नहीं है मकसूद, गौर ना करे, वो तबाह हो गया। तो हमने गौर पता नहीं आज तक कभी किया कि नहीं किया, देखेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 190 से, इन नफी खल किस समावाती वलर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, बेशक रात और दिन के आने और जाने में। अच्छा, यहाँ एक दो छोटी बातें और भी नोट कर लें, फिर साथ ही आज शुरू करूँगी। आप देखिए कि यहाँ तख्लीक की बात है ना, इन नफी खल किस समावात से आज शुरू हो रही है और सूरत आले इमरान का ये आखिरी रुकू है। और इसके अंदर आप देखिए कि जो अंदाज है ना, देखा जाए तो ये आखिरी लेकिन 20वां रुकू है, रुकू नंबर 20 है। सूरत बकरा का 20वां रुकू भी इन्हीं आयतों से शुरू हुआ था, इन नफी खल के समावाती वलर्दि वख्तिलाफिल्लैलि वन नहारी वल्फुल्किल्लति तजरी। याद है किसी को उस आयत का नाम क्या लिखाया था? आयतुल आयात, आयतों वाली आयत, जिसमें बहुत सारी आयात है, आयतुल आयात। तो इत्तफाक कह लीजिए, ये अल्लाह की हिकमत है कि 20वीं आयतों पे ही, वहां भी यही अंदाज था, यहां भी यही अंदाज है। क्या वख्तिलाफ लैली वन नहार, रात और दिन के आने जाने में, ला आयात लि उलिल अलबाब, होशमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। दो लफ्ज़ नोट कीजिएगा, आयात और उलुल अलबाब, इन दोनों की वजाहत देखेंगे। आयात तुन का लफ्ज़ जो है ये आयतुन की जमा है। आयत उर्दू में हम बोलते हैं, निशानी, मोजज़ा, तीन मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है ये कुरान पाक में। वो मोजज़ात जो अम्बिया कराम को दिए गए, कुरान पाक की आयतें जो इस वक्त भी हम पढ़ रहे हैं, और तीसरा इसका मानी होता है दलील और निशानी। इस आयत में ये तीसरा मानी है, और डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो आयत कहते हैं ऐसी चीज़ जिसको देखकर कोई दूसरा याद आ जाए, एक चीज़ जिसको देखकर दूसरी चीज़ याद आ जाए। मसलन आप देखिए कि आप अपनी अलमारी ठीक कर रहे होते हैं, फिर उसमें से कोई एक पुराना सा पर्स निकल आता है, फिर आपको वो पर्स देखते ही याद आता है, वो हाँ ये आज से 2 साल पहले मेरी फलां दोस्त ने दिया था, किधर गई वो, आज तक तो देखी नहीं, तो उस पर्स को देखकर दोस्त याद आ गई ना, ये मतलब होता है। जिस तरह हम अपने तौर पे भी कहते हैं कोई निशानी दे दो, या बाज दफा आप देखिए कि माएँ फौत हो जाती हैं तो बच्चों को देखकर लोग कहते हैं खुद तो मर गई, ये निशानियां छोड़ गई। तो इन नफी खल्क समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल्लैलि वन्नहारि लआयातिल्लिउलिल अल्बाब में इशारा क्या है कि इस कायनात की एक एक चीज बोल बोलकर अल्लाह की याद दिलाती है। और उलुल अलबाब का लफ्ज है अलबाब, लुब से है, लाम बा बा मगज को कहते हैं, ब्रेन खोपड़ी है जो स्कल, वो नहीं जो अंदर आपके ब्रेन होता है, खास अकल की तरफ इशारा, वो अकल जो फितरते सलीमा पर हो। अभी इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे थोड़ी सी। हम उर्दू में कहते हैं लुब्बे लुबाब, वो भी है लुब गुदे को कहते हैं, किसी चीज का गुदा मगज। तो गोया के अल्लाह ताला ने यहाँ अकल वालों की पहचान बता दी कि वो अपने रब को याद करते हैं चीजों को देखकर। वहां आयत 164 सूरह बकरा की थी, उसके आखिर में क्या था, लआयातिल्लि कौमि याकिलून, अकल वाली कौम के लिए निशानी है। यहाँ लआयातिल्लि उलिल अलबाब आ गया, वही बात है। तो हिदायत की तरफ पहला कदम के कायनात को देखो, कायनात के अंदर जो चीजें उनको देखो, मज़ाहिर फितरत का मुशाहिदा करो। वो एक शेर भी है ना कि खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। ये वही चीज़ है जिसको अलामा इकबाल ने भी कहा कि खुदी में खो के पा जा सुराग़े ज़िंदगी। हकीकत यह है कि ये कायनात बोल बोल के इंसान को अल्लाह की मौजूदगी का एहसास देती है। तो कुरान पढ़ के जैसे अल्लाह ताला से तारुफ होता है, अल्लाह से मोहब्बत होती है, इसी तरह पहला तारुफ कायनात को पढ़ के होता है। और अगर एक जुमला जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ इन आयतों पे वो लिख लें तो फिर बात और आसान होती है कि कुरान अल्लाह का कौल है और कायनात अल्लाह का फेल है, और अल्लाह के कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। बात वाज़े। आज के दौर में मुसलमानों में एक सोच आ गई, और वो क्या है कि साइंस पढ़ना, कायनात पे गौर करना, देखना, ये सब कुछ जो है वक्त का ज़िया है। हालांकि जितनी मोहब्बत इस वक्त कुरान की आयत को देखकर आपको अल्लाह से महसूस हो रही है, इतनी ही मोहब्बत उस वक्त भी आनी चाहिए थी जब आप यहाँ आते हुए सुबह आसमान को देख रहे थे, बादलों को देख रहे थे, सनराइज आपको दिख रहा था, कि ये कायनात बोल बोल कर बंदे को अल्लाह का एहसास दिलाती है। और साथ ही साथ जब इंसान इस कायनात पे गौर करते हुए अल्लाह ताला की मार्फत पा लेता है तो उसके हिदायत की तरफ कदम बढ़ने लगते हैं। आगे कुछ आयतें इनको इकट्ठा करके फिर मैं इनके ऊपर इंशाल्लाह इकट्ठी बात करूंगी। आयत 191 देखिएगा, जब गौर व फिक्र करते हैं, गौर करते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े भी बैठे भी और पहलुओं पर भी। तीन कैफियत है, क्याम खड़े खड़े, कायम क्याम, कुऊद बैठे, कादा नमाज में भी होता है, और जुनूब जम से। यहाँ एक खूबसूरत नुक्ता नोट कीजिएगा, लेटने का अंदाज भी बता दिया। ये नहीं कहा कि अला ज़ुहूरी हम पीठ नीचे करके चत लेट जाते हैं, और ये नहीं कहा कि उल्टे लेट जाते हैं और मुंह नीचे होता है और पीठ ऊपर होती है। अल्लाह के नबी का अमल भी दिखता है कि आप जब बिस्तर पे आते थे तो आप करवट के बल लेटते थे, यानी इस तरह कि आपकी बाई साइड ऊपर होती थी और आप फेसिंग टू राइट साइड होते थे। और आज साइंस ने इसको साबित कर दिया कि सोने का यही सबसे सेहतमंद अंदाज है। जब हम बिल्कुल उल्टा सोते हैं तो हमारे सारे जिस्म के जो बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो जाहिर है कि बोझ डालते हैं हमारे पेट पे, हमारे सीने पे, और नीचे दिल भी है, मैदा भी है, इंसान का सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी नीचे की तरफ होता है, ये भी दुरुस्त नहीं। और जब हम बिल्कुल यूं छत लेटते हैं तो आप देखिए कि जितना हमारे जिस्म में ब्लड होगा ना वो हमारे नीचे चला जाएगा ना, तो हो सकता है कि ब्लड को पंप करना मुश्किल हो। बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ये ग्लास है आधा पानी का, मैं इसको अगर लेटाऊंगी तो इतना आधा खाली दिखेगा ना, सारा पानी नीचे चला, जैसे इस वक्त गया हुआ है, आधा नीचे आधा ऊपर है। तो जब हम नीचे लेटेंगे तो ऐसे ही होगा, लेकिन जब हम इस तरह से लेटते हैं जिस तरह के अल्लाह के नबी लेटते थे, जिसको यहाँ जुनूब कहा गया, जम का लफ्ज़ भी आता है, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड ऊपर होती है और जिस्म के एंगल क्या होता है कि जिसमें दिल पे बोझ नहीं पड़ता। खाना खाया भी हुआ अगर आपने उस वक्त बिलफर्ज, तो मैदा भी ऊपर है, आपकी जिस्म के सेंसिटिव पार्ट्स ऊपर होते हैं, और इस तरह लेटने में दिल को काम करने में कोई मुशक्कत नहीं होती। किसने ये बताया था उस दौर में अल्लाह के नबी के, जबकि साइंस का कोई वजूद भी नहीं दिखता, ये इसने बताया था, ला जुनूबी हैं। कुरान पढ़ेंगे तो सोने का तरीका भी ठीक हो जाएगा, और अपने बच्चों का खुदा के लिए भी से ठीक करें। अगर आपका बच्चा उल्टा सोता है सीधा कीजिए, सीधा लेटता है उसको भी मना कीजिए। और बाज़ दफ़ा सुना गया कि जो भी कुछ चत लेटते हैं फिर उनको ख्वाब भी बहुत आते हैं। ये सर हमारे जिस्म के साथ ताल्लुक है ना, ब्लड हमारा नीचे चला जाता है, ब्रेन काम करता है कभी नहीं करता। तो जुनूब लेटे हुए, व या तफक्करू नफी खल के समावाती वल अर्द, और मजीद गौर व फिक्र करते रहते हैं आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, और इस गौर व फिक्र के बाद किस नतीजे पे पहुँचते हैं, रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब तूने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया। यहाँ नोट कीजिएगा, तफक्कुर खालिक में नहीं है, मखलूक में है। लिखेंगे जुमला, अभी नहीं समझ आएगा लेकिन बाद में समझ आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात के बारे में नहीं सोचना कि वो कैसा है, उसके हाथ किससे हैं, उसके जिस्म है, पाँव हैं क्या, नहीं, खालिक के बारे में नहीं सोचना, मना है। बहुत ज़्यादा अल्लाह के बारे में इंसान सोचे तो इंसान की अकल उसको पता नहीं किधर ले जाएगी। हाँ, तख्लीक के बारे में सोचना है, और अल्लाह की तख्लीक पे गौर करते हुए खालिक तक पहुँचना है, यही खूबसूरत अंदाज है सोचने का। इसके बरक्स फलसफा, फिलॉसफी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या कहती है, खालिक के बारे में सोचो, अल्लाह कैसा है, क्या है, उसके हाथ उसके पाँव, तसव्वुफ, अल्लाह के बारे में मुराकबे करता है इंसान, वो ऐसा है, मुझे रोशनी दिख रही है, ग्रीन है, सुर्ख है। तो सही तरीका क्या है अल्लाह के बारे में, कि इस कायनात पे गौर करो और अल्लाह तक पहुँचो। जैसे आप किसी की कोई शाहकार चीज़ देखते हैं, उसको देखकर बनाने वाले की तरफ तवज्जो जाती है, आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी चीज़ है, कैसे अच्छे हाथ होंगे जिन्होंने ये खूबसूरत चीज़ बनाई, कैसे प्यारा दिमाग होगा जिसके अंदर ये ख्याल आया। तो चीज़ के ज़रिए उस चीज़ वाले की तरफ पहुँचना, ये बेहतरीन अंदाज़ है, और इस गौर व हौज़ का नतीजा कि रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब तूने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, मैं क्यों पैदा किया गया, क्या सिर्फ खाऊं पीऊं, बच्चे पैदा करूं, दुनिया से चला जाऊं, नहीं, जिस तरह ये कायनात एक सेट सिस्टम के साथ घूम रही है तो मेरी भी ज़िंदगी का कोई मकसद होगा। जब इस दुनिया में रहते हुए हर चीज़ का एक नतीजा निकल रहा है, सूरज आ रहा है, चांद जा रहा है, रोशनी है, सर्दी है, गर्मी है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे अमाल के नतीजे ना निकले। और गौर व फिक्र तो इस पे भी करता है ना, कि जब से दुनिया बनी सूरज भी है चांद भी है, बेजान मखलूक इंसान को सर्व करती है, तो एक बेजान मखलूक अल्लाह ताला हजारों लाखों साल तक उसको ज़िंदगी दे, तो जिस इंसान के लिए ये सब बना वो 60-70 साल में मर जाए। अगर आप इस मौजू पे सुनना चाहें तो मुझे फिर याद आ जाता है 2009 का जो दौरे कुरान था, वो अल्लाह की निशानियों के बारे में था, उसकी इंट्रो फाइल्स वैसे वेबसाइट पे मैंने अब देखी नहीं, पहले होती थी, उसकी इंट्रो अगर आपको मिल जाए ना, तो उसमें 2-3 दिन हमने इसी मौजू पे बात की थी कि कायनात पे गौर फिक्र तफक्कुर इसकी क्या अहमियत है। उसमें ये बात मैंने एक डिस्कस की थी, कायनात का सबक, कि ये कायनात हमें बहुत कुछ सिखा रही है, डिसिप्लिन सिखा रही है, टाइम की पाबंदी सिखा रही है, दुख के बाद सुख आता है, रात के बाद सुबह आती है, ये सिखाती है। और उसी में एक ये भी सबक था कि कायनात की हर चीज़ कब से है और इंसान सिर्फ 50-60 साल। फिर इंसान सोचता है कि एक ऐसा जहान होना चाहिए कि इंसान को भी लंबी उम्र मिले, और सुबहान का फके ना अजाब नार। जितना गौर व फिक्र ज्यादा हुआ, मकसद तख्लीक या नजर आया, और साथ ही साथ जहन्नुम की फिक्र लग गई। तू पाक है इससे कि बस काम करे तो दोजख में डाले, यानी गौर व फिक्र के बाद भटक नहीं गए बल्कि जहन्नुम से बचने की एक ऐसी तड़प लग गई उनको कि उनको लगा कि हमारी जिंदगी तो इसके बगैर बिल्कुल अधूरी है। अगर हमने अपने रब को राजी ना किया, उसकी नाराजगी से डर इंसान के दिल में इतना आया कि इंसान तड़प के रह गया। और साथ ही अब देखिए कि जब गौर किया, अगर आप गौर करें ना, पहली आयत में तौहीद है अल्लाह तक, इन नफी खल की समावाती वाल अर्थ, और दूसरी में जहन्नुम का तस्करा पढ़ रहे हैं। आयत 192 को देख ले, रब्बन इन्नक मन तुदखिल नार फकद अखज़ईतहू, ए हमारे रब जिसको तूने दाखिल कर दिया आग में तो बेशक तूने इसको रुसवा कर दिया। भरी महफिल में कोई मैं थप्पड़ मार दे तो हमारी बेइज्जती हो जाती है। कहाँ एक बंदा मैदाने मक्षर में हो और पीछे से कोई आए और इंसान को धक्का दे कि चलो जहन्नुम के कबाड़ खाने में घुस जाओ। फकद अखज़ईतहू वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। पहली आयत ईमान बिल्ला, ये दूसरी जो आयत पढ़ी ये ईमान बिल आखिरा, और आयत 193 में ईमान बिर रिसाला, इसको देखिए तफसीर बाद में करेंगे। रब्बना इन्ना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान, ए हमारे रब हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की निदा दे रहा था, यानी ईमान की तरफ पुकार रहा था। क्या कह रहा था? अनामिनू बि रब्बिकुम, कि ईमान ले आओ अपने रब पर। फिर क्या हुआ? आमन्ना, फिर हम ईमान ले आए। अब ये कौन है, मुनादी कौन है, पुकारने वाला, कॉलर, कॉल करने वाला? तो सबसे पहले तो रसूल, अपने दौर का यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। फिर हर दौर का दाई दीन, जैसे आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारे लोग अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, वो सारे। और तीसरा मुनादी की तफसीर की गई है मुफस्सरीन के नज़दीक, कुरान, जीता जागता एक मुबल्लिग है। कोई भी नहीं होगा तो ये कुरान लोगों को सिखा देगा कि रब है। तो बंदा कहता है अल्लाह पुकारने वाला पुकारता है कि अपने रब की तरफ आओ, और हम आ गए, आमन्ना, लब्बई कह दिया। जब नबी ने पुकारा तो अबू बकर ने बगैर सोचे समझे कह दिया लब्बैक व सादैक, दावत कबूल कर ली। क्योंकि जब ईमान बिल्ला और ईमान बिल आखरत पूरा हो जाता है ना, तो रसूल की बात को मानना आसान हो जाता है। आप देखिए कि सूरत फातिहा में हमने क्या पढ़ा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करता हूँ और तुझसे ही मदद तलब करता हूँ। दिखा क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा। इधर भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखाने की जगह क्या आ गया, फामन्ना, हम कबूल कर गए। रसूल ने बता दिया, हम मान गए, हम उस रास्ते पे चले जिस पे कोई बुला रहा था। तो गोया के जिसकी अकल सलामत होगी वो दावत को फौरन कबूल करेगा। कर क्या, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ए हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे। सबसे पहली फिक्र बंदे को ये लग जाती है हिदायत पे आते ही कि मेरे गुनाह बहुत है, अल्लाह उनको माफ़ कर दे। वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, और हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे, हमारे नामे माल के दाग धब्बे दूर कर दे, और हमारे दामने किरदार के जो दाग हैं वो भी साफ कर दे। और एक और ख्वाहिश, वतवफ्फना माल अबरार, और हमें फौत करना नेक लोगों के साथ। ये क्या बात हुई, जिंदगी तो गुजार ली, अब नेक के साथ गुजारना। अबरार का लफ्ज थोड़ा सा देख लीजिएगा, बा रो रा इसका रूट होता है, अबरार बार से है, और बार कहते हैं वो शख्स जो हर वक्त नेकी के लिए तैयार हो। अपने आप से पूछिए, क्या मैं हर वक्त नेकी के लिए तैयार हूँ? जो नेकी में सुस्ती ना करे, फौरन चल पड़े। अबरार बहुत ज्यादा नेक, ये अल्लाह नेक लोगों का साथ दे। क्यों? कि अल्लाह आज दुनिया में तो कुछ कर ही रहे हैं, मौत के वक्त ऐसे काम करें कि जिसके बाद अल्लाह तो हमसे राजी हो जा, हमारी मौत ऐसे काम पे आए, नेक लोग हमारे साथ हों। अल्लाह जब हम मरें तो हमारे इर्द गिर्द नेक लोग हों, हम अच्छे काम करते हुए दुनिया से जाएं। और अगली आयत में कुछ मजीद दुआएं, रब्बना वातिना मा वातना ला रुसुलिक, ए हमारे रब हमें बख्श वो सब कुछ जिसका तूने हमसे वादा किया हमसे अपने रसूलों के जरिए, यानी जन्नत और फतह, दुनिया की कामयाबी, अल्लाह सब कुछ दे दे। हम वला तुखसिना यौमल कियामा, हमें कयामत के दिन रुस्वा ना करना, क्योंकि इन्नक ला तुखलिफुल मियाद, यकीनन तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। ए अल्लाह तू अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। इतना बंदा है मोमिन को याद होता है अल्लाह का वादा, और इस पे यकीन है कि तू गफ्फार है तो तू जरूर मेरे गुनाहों को माफ करेगा, तू रहीम है तो तू जरूर मुझ पे रहम करेगा, और मुझे यकीन है कि जन्नत है अगर तो फिर तू मुझे जरूर देगा। इतने तड़प के दुआ मांगी, सब सो रहे और बंदा तहज्जुदों में ये दुआएं मांग रहा है, तो अल्लाह ने क्या किया इस दुआ के साथ? आयत 195, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, तो इनके रब ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली। क्यों ना कबूल करता अल्लाह? कौन है जो रातों को छोड़ के बिस्तर अल्लाह के लिए जागता है और ये दुआएं मांगता है, तो अल्लाह उसकी कदर ना करे क्या? और साथ ही कबूल भी की और कह दिया, अन्नी ला उदी अमल आमिल मिनकुम मिन ज़करे ना उनसा, कि मैं तुम में से किसी अमल करने वाले के किसी अमल को जाया करने वाला नहीं हूं, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। ये है इक्वेलिटी। जरूरियात के तहत दुनिया में औरतों मर्दों को रोल फर्क दिए गए, लेकिन आमाल के एतबार से मुकम्मल इक्वेलिटी है। क्यों किसी का अमल जाया नहीं करता औरत होने की वजह से या मर्द होने की वजह से? डबल नहीं दे देता इसलिए कि बादुकुम मिम बाद, तुम में से बाज तो बाजी में से, तुम सब एक दूसरे से हो, एक ही जिन्स में से हो, एक ही बाप के नुतफे से बेटा भी है और बेटी भी है, और एक ही माँ के रहम में बेटा भी पलता है बेटी भी पलती है। फर्क क्या चीज डालती है नेकियों में? औरत और मर्द नहीं बल्कि कुर्बानियाँ। इसीलिए कहा, फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम, बस जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए, वह ऊज़ू फी सबीली, और जिन्हें मेरी राह में अजियतें पहुंचाई गई। याद आ रही है सूरत बकरा की खात्मे की आयतें, कि सब बितकदामन फंसरना लल कौमिल काफिरीन, और क्या किया? वकातलू, जिन्होंने मेरे रास्ते में जंग की, लड़े, वकुतिलू, और जाने भी दे दी। मैं क्या करूंगा? लाउकफ़िरन्नान्हुम सय्यातिहिम, मैं लाजिमन इनसे इनकी बुराइयां दूर कर दूंगा। इनके नामे माल में अगर कोई दाग धब्बा है, और बहुत सारे होंगे इंसानों के अंदर, तो मैं सब साफ करके रख दूंगा। और वलउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, यकीनन उनको उन जन्नतों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। क्या ये इनके आमाल की वजह से? नहीं, बल्कि सवाब मिन इंदिल्लाह, ये बदला है अल्लाह के पास से, यानी अल्लाह इनकी नेकियों से खुश हुआ कि अपने पास से जन्नत दे दी। ये मुराद है, क्योंकि किसी के पास इतनी नेकियां नहीं है कि जन्नत पा सके। वल्लाहु इंदहु हुस्नु सवाब, और बेहतरीन बदला तो अल्लाह ही के पास है।
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.